जवाब में हम ऐसा सोच करके संतुष्ट हो जाते हैं कि क्या करें, शायद ऐसा जीवन जीना हमारी मजबूरी है और इससे बेहतर जीवन जीने की संभावनाएं बहुत नगण्य हैं। शायद कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इससे बेहतर जीवन की परिकल्पना तो हो सकती है, लेकिन वास्तविकता में तो हम इससे बेहतर जीवन नहीं जी सकते। तब ऐसी स्थिति में हम जैसा जीवन जी रहे हैं उसी में संतुष्ट होकर के, जबकि हम अपने उस जीवन से ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं, फिर भी हम ये मान करके कि अब उससे बेहतर नहीं हो सकता, हम उसमें ही संतुष्ट होकर के और जीवन व्यतीत कर देते हैं। वैसे जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहना अच्छी बात है, लेकिन जो और प्राप्त किया जा सकता है उसके लिए उद्यम भी नहीं करना, ये अच्छी बात है। हमारे अपने जीवन को हम और बेहतर ढंग से जी सकते हैं, ये विचार हमारे जीवन को एक गति देता है और व्यक्ति को हमेशा अपना जीवन जीते हुए बहुत डायनेमिक तो होना ही चाहिए, बहुत गतिशील होना चाहिए, निरंतर वो अपने जीवन में प्रगति करता रहे, ये उसके भीतर एक विचार होना चाहिए। लेकिन प्रगति के मायने ऐसा नहीं है कि हम अपने जीवन को और अपने सिद्धांतों को दांव पर लगा दें और प्रगति करें, या कि हम प्रगति के मायने ये मान लें कि मुझे भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाएं, मैं भौतिक रूप से और विकसित हो जाऊं, समृद्ध हो जाऊं, इसका नाम प्रगति है। सारी भौतिक प्रगति के बाद भी यदि हम आत्मिक रूप से अपने आप को विकसित नहीं करते हैं, आत्मिक रूप से हम समृद्ध नहीं होते हैं, तो ये जो आंतरिक दरिद्रता है या ये जो आध्यात्मिक अंधापन है, वो हमारे जीवन को बेहतर जीने में मदद नहीं कर सकता। और आज ये दोनों चीज़ें हम लोगों के जीवन में देखने में आती हैं। जो लोग भौतिक रूप से समृद्ध हैं वे आत्मिक रूप से कितने दरिद्र हैं, उनकी दरिद्रता छिपी हुई नहीं है। जो बाहर की दुनिया में जितने सजग, सावधान और खुली आंख रखने वाले लोग हैं, वे आध्यात्मिक रूप से अपने जीवन में कितने अंधेपन में जी रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। और यही वजह है कि हम लोग चाह करके भी और अपने जीवन को बेहतर नहीं बना पाते। हम आज बैठे हैं इस बात के विचार करने के लिए कि हमारे जीवन में हम ऐसा कुछ क्या करें जिससे कि हमारा जीवन और अधिक बेहतर हो सके। हमने अपने जीवन में जैसे नहीं है वैसा दिखाने, वैसा व्यक्त करने, प्रदर्शित करने की बहुत कोशिश की, और हमने लोगों को इस बात का धोखा भी दिया है। इतना ही नहीं, हमने अपने आप को भी बहुत धोखे में रखा है कि हम बहुत समृद्ध हैं, हम एक बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। हमें इस धोखे से, इस छल कपट और दिखावे से बच करके और एक सहज और सरल जीवन जीने की शुरुआत करनी चाहिए, जो कि हमारे जीवन को अच्छा बनाने में मदद दे। सरल होने के मायने क्या है? ईमानदार होना। सरल होने के मायने क्या है? स्पष्टवादी। सरल होने के मायने हैं बहुत उन्मुक्त हृदय होना। सरल होने के मायने हैं सीधा और सादा होना। सादगी सरलता का ही एक रूप है, और सरल होने के मायने बहुत भोला भाला व्यक्तित्व, बहुत इनोसेंट। इन सब चीजों को हम अपने भीतर ला सकते हैं अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए। अपने जीवन को और बेहतर ढंग से जीने का यदि कोई उपाय है तो यही है। मैंने अपने जीवन में बहुत दिखावा और प्रदर्शन करके अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश की है, लेकिन नहीं बन पाया। दिखता जरूर है अच्छा, लेकिन दिखना और बन जाना दोनों में बहुत फर्क है। जीवन का अच्छा दिखना अलग बात है और जीवन का अच्छा होना बहुत अलग चीज है। ऐसा बोलना कि सच मालूम पड़े यह बहुत आसान है, लेकिन सच बोलना बहुत कठिन है। ऐसा जीवन जीना जो कि वास्तव में सच्चा है यह बहुत कठिन है, लेकिन लोगों की दृष्टि में मैं सच्चा दिखता रहूं, ऐसा जीवन जीने में ज्यादा मुश्किल है। और कर रहे हैं हम वही सब, इससे हुआ क्या है? सिर्फ इतना ही कि बस हमने अपने जीवन का निर्वाह कर लिया है, लेकिन हम अपने जीवन में कुछ बेहतर हासिल नहीं कर पाए। और एक मन के भीतर एक रिक्तता, एक खालीपन फिर भी महसूस होता है, एक असंतोष फिर भी मन के भीतर कभी कभी, जब इस व्यस्ततम जीवन से हट करके थोड़ा सा 5 मिनट बैठते हैं तो लगता है कि क्या क्या मैंने प्राप्त किया, मैंने खोया ही है, मैंने पाया नहीं है। उस खालीपन को भरने के लिए हम चाहें तो एक प्रक्रिया शुरू करते हैं अपने जीवन को अच्छा बनाने की, अपने जीवन में सरलता, ईमानदारी, स्पष्टवादिता, बहुत हार्दिक, बहुत सीधा सादा और भोला भाला मन दे करके अपना जीवन जी। मुश्किलें बहुत आएंगी, आज तक मुश्किलें आई हैं और इसी वजह से हमने उस रास्ते को नहीं चुना जो हमारे जीवन को अच्छाई की तरफ ले जाता है। लेकिन वो जो हमने रास्ता चुना है जिसे हम सरल मानते हैं, उसमें आने वाली मुश्किलें हमें ठीक ठीक जाननी पड़ती हैं। अपने जीवन को चार लोगों के बीच में बहुत अच्छा मानना, लेकिन अपने जीवन को पतन की तरफ ले जाना, एक नई मुश्किल अपने जीवन में खड़ी करना, ये हमें दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए जरूरी है कि अब हम बात हो गया, दिखा लिया लोगों को कि हम बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, सब कुछ तो देख लिया हमने, स्वयं भी लोगों के जीवन में झांक करके देख लिया। जयेंद्र कुमार ने जब सुना कि एक व्यक्ति के पास में 365 कमरे हैं, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि चलो देखते हैं क्या करते होंगे उन 365 कमरों का। उनके मन में तो यही आया कि शायद कोई बहुत अलग ही व्यक्ति होगा, इसलिए वो अपने आप ही चले गए उनसे मिलने बिना बुलाए। और गौर से देखने लगे उनको कि कैसे उठते बैठते हैं, कुछ अलग होगा, सुना है कि 365 कमरे हैं और बहुत रईस आदमी है, तो जब रईस आदमी है तो कोई उनके जीवन जीने का ढंग अलग होगा। तो देखा तो वो वैसे ही अपने जैसे ही उठते बैठते हैं, बोलते चालते हैं, हाथ पैर हिलाते, वो तो सोच रहे थे कुछ अलग ढंग से करते होंगे, लेकिन सब वैसे ही था। फिर उनने सोचा कि शायद भोजन करते समय कुछ अलग ढंग से करते हो, तो भोजन भी उनने ऐसे ही किया, ऐसे नहीं किया, कहीं से भी ऐसे ही किया। तो सोचा कि शायद रात में इनके सोने का ढंग अलग हो, क्योंकि 365 कमरे हैं, 10-10 मिनट 15-15 मिनट एक एक में सोते होंगे, तब तो पूरे 365 दिन की 365 कमरों का उपयोग करते होंगे, लेकिन वैसा भी नहीं हुआ। और जब रात के अंधेरे में उन्होंने एक कमरे में उन्हें सोते हुए देखा तो पूरा कमरा भी खाली था, ठंड की वजह से सिकड़े हुए थे, कुल 3 फीट में सोए हुए थे। तो वापस लौट आए कि जगह तो इनके लिए 6 फीट या 3 फीट ही चाहिए है, लेकिन 365 कमरे में इनका अहंकार सोता है। हमने भी क्या किया है, छल, दिखावा, अहंकार, ये जो हमारे अपने जीवन को पतन की तरफ ले जाने वाली चीजें हैं, उन्हीं का सहारा लिया है अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए। और एक भ्रम हमने अपने जीवन में पाल रखा है कि शायद ऐसा सब करने से हम अपने जीवन को बेहतर जी पा रहे हैं, बहुत अच्छा हमारा जीवन बन गया है। थोड़ा सा विचार करें, इससे हट करके क्या कोई और जीवन जीने का ढंग है जो कि हमारे जीवन को एक आत्मसंतोष दे सके, हम सचमुच ये कह सकें कि हाँ हमने बेहतर ढंग से जिया। ईमानदारी का रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन है बहुत सीधा साधा। मुश्किलें उसमें जरूर आती हैं पर मन बड़ा प्रसन्न रहता है। एक व्यक्ति दुकान चलाता था, बड़ा सज्जन था। एक और व्यक्ति जो उस सज्जन के साथ में दुर्जनता करता था, लेकिन मजा तो तब है जबकि कोई हमारे साथ बेईमानी करे और हमारी ईमानदारी अप्रभावित बनी रहे। होता यह है कि दूसरे को बेईमानी करते देख करके मन में आता है कि अपन भी कर ले, छोड़े छाड़े क्या धरा है इस ईमानदारी, सब तो कर रहे हैं। ऐसा आता है कि नहीं आता? और यही एक चीज हमारे जीवन को जो वास्तविक है उससे हटा करके फॉल्स की तरफ ले जाने में कारण बनती है। वो व्यक्ति जो दुर्जन है वो करता क्या है, रोज उसके यहां माल खरीदने आता है और रोज खोटे सिक्के देके जाता है, और वो सज्जन व्यक्ति रोज उससे खोटे सिक्के ले करके रखता जाता है। एक दिन ऐसा हुआ कि वो सज्जन व्यक्ति जरा दुकान पर किसी काम से देर से पहुंच पाएगा, इसलिए अपने बेटे को उसने बिठाया। और जैसे ही वो दुर्जन व्यक्ति खोटे पैसे देकर के सामान ले जाने के लिए आया, बेटे को उसने जैसे ही खोटे पैसे दिए तो उसने वापस लौटा और माल देने से इनकार कर दिया। घर पहुंच करके पिता से कहा कि एक व्यक्ति आया था, खोटे पैसे देकर के माल ले जाना चाहता था, मैंने पकड़ लिया उसको, मैंने उसको माल नहीं दिया और खोटे पैसे उसी के माथे डाल दिए, वापस लौट गया वो अपना सा मुंह लेकर के। तब वो सज्जन व्यक्ति बहुत दुखी हुए बेटे के अपने इस व्यवहार से। देखो तो कैसा वो सज्जन व्यक्ति होगा, बेटे के इस व्यवहार से दुखी है और वो जो दुर्जन व्यक्ति रोज उसके साथ में दुर्जनता कर रहा उससे बिल्कुल दुख नहीं है, है ना? अजीब सी बात। इस संसार में ऐसी बातें अजीब ही मालूम पड़ती हैं। इस संसार में बेईमानी की बातें ठीक ठीक मालूम पड़ती हैं, ईमानदारी की बातें तो ऐसी बाह्यात मालूम पड़ेंगी। ऐसा हो गया है अपना सबका जीवन। उसके थॉट्स सुनिएगा, उसकी फीलिंग सुनिएगा, वो कह रहा है कि बेटे तुमने ठीक नहीं किया, उससे तुम्हें वो खोटे पैसे लेकर के उसे माल दे करके रवाना करना चाहिए था। अब वो उन खोटे पैसों को किसी और को देकर के आएगा, किसी और को ठगेगा। मैं तो रोज रोज उससे खोटे पैसे लेकर के जमीन में दबाता रहता था कि कितने होंगे इसके पास, एक दिन तो खत्म हो जाएंगे खोटे पैसे और ये आदमी ईमानदार। कोई व्यक्ति कितने दिन बेईमानी कर सकता है? ईमानदारी की सीमा नहीं है, बेईमानी की सीमा है। बुराइयों की सीमा है, अच्छाइयों की कोई सीमा नहीं होती। एक बार हम अगर ये तय कर लें कि अपने जीवन में, मुझे अपने जीवन की घटना याद है, मैं सुनाता भी हूँ उसको, बड़ा मजा लेके सुनाता हूँ, अपनी प्रशंसा के लिए नहीं, ये ध्यान रखिए, मुझे अभी भी वो घटना याद आती है तो मन में बहुत प्रसन्नता होती है कि चलो आज भी ऐसा किया जा सकता है। मैं एक निश्चित जगह से, दुकान से सब्जी और फल फूल खरीदता था, सीधे जाकर उसके यहाँ खड़े होता था और जो 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 लेना है वो लेकर के चले आता था। मेरे से और लोग हमेशा कहा करते थे कि ये तुम्हारा सब्जी खरीदने का ढंग ठीक नहीं है, जरा चार दुकानों में टटोला करे, भाव देखा करे, ऐसे कैसे है ना, ऐसे तो तुम रोज बुद्धू बन जाओगे। और मेरे मन में ये बात जरा जमती नहीं थी। मैं एक ही दुकान से लिया करता था और एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने उससे कहा कि और केले रख दो एक रुपए के। पुराने जमाने की बात है ये, मतलब थोड़ा सस्ता जमाना था, एक रुपए के 10 आते थे, अब बात अलग है, 10 रुपए के 10 आते हैं, 10 times सब चीज़ों के रेट्स बढ़ गए, अपने भी बढ़ गए, आदमी के भी 10 times बढ़ गए रेट्स। अब इतना ईजी थोड़ी मिलता आदमी आदमी से, बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत महंगा हुआ है इन दिनों। अब वो बोलता कि बाबू जरा ठहरो, उसकी दुकान पर और भी लोग लेने आ गए थे, तो कह रहा जरा ठहरो अभी देता। मैंने कहा ठीक भाई, मैं तो खड़े हुआ हूँ। मेरे मन में ऐसा नहीं आया कि अब चूंकि मैं इसका परमानेंट ग्राहक हूं इसलिए मुझे टाल रहा है, आने में देर नहीं लगती, लेकिन ये विचार। 5 मिनट हुआ होगा और 2-4 जो ग्राहक आए थे उसके पास केले खरीदने, वो जैसे ही विदा हुए और उसने मेरे थैले में 12 केले डाल दिए। मैंने कहा भैया 1 रुपये के चाहिए अपने को, ये 1.25 के हो गए, 2 ज़्यादा डाल रहे हैं आप। बोले नहीं बाबू, आपको तो 1 रुपये के ही है। मैंने कहा मतलब मेरे को 1 रुपये के 12 किस बात से? बोलता आपने आज तक कभी ये नहीं कहा कि तुम 1 रुपये के 8 क्यों दे रहे हो, वो दुनिया 10 दे रही है। तब आपके साथ भी मैं बेईमानी करूं ऐसा मेरा मन नहीं होता, और 4 लोगों के सामने इसलिए मैंने नहीं दिया क्योंकि वे, मैं 8 से शुरू करता हूं उनसे तब 10 पे आता हूं। वे मेरे से रोज कहते हैं, मैं अगर उन्हें ईमानदारी से कहूं कि 10 देता हूं तो वे 12 लेके जाएंगे मेरे से और मेरी दुकानदारी खराब करेंगे। इसलिए मैं उनसे 8 से शुरू करता हूं कि 8 ही दे रहा हूं, तब मुश्किल से उन्हें 10 देता हूं, जबकि 10 तो मुझे देनी है, पर मैं आपको 12 इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपने कभी नहीं कहा। ये क्या चीज है? मैं ये सोचता हूं, आज सोचता हूं कि ये क्या चीज है। अगर हम किसी व्यक्ति के प्रति ईमानदार हैं, किसी के व्यक्ति के प्रति हम बात सरलता से पेश आते हैं, तो उसका वो छल कपट करने का भाव थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम तो होता ही है, बेईमानी करने का भाव कम तो होता ही है। हम दूसरे के द्वारा ठगाए जाएं, इसमें ज़्यादा बुराई नहीं है भैया। दूसरे को ठगने की जो आदत है वो हमारे जीवन को, कई जीवन को नष्ट करेगी। अगर हम एक बार ठगाए गए हैं तो एक ही बार ठगाए जाएंगे, एक ही जीवन नष्ट होगा। लेकिन हम दूसरे को अगर ठगते हैं, दूसरे के साथ बेईमानी करते हैं, तो वो बेईमानी का संस्कार इस जीवन में नहीं, कई कई जीवन में हमारे जीवन को पतन की तरफ ले जाने में कारण है। स्पष्टवादिता के मायने भी सरलता है। सरल व्यक्ति ही बहुत स्पष्ट हो सकता है। अपन लोग तो ऐसा कहां कर पाते हैं, देखते हैं कि कहां किस तरह से कितना व्यक्त करना है, कितना छिपा के रखना है। जितना दुराव छिपाव होगा उतना ही असहजता होगी, उतनी ही कठिनाई हमारे जीवन में। जो व्यक्ति जितना सरल होगा वो उतना अधिक निर्ग्रंथ होगा, उतना अधिक ग्रंथियों से, कॉम्प्लेक्स से, जटिलताओं से मुक्त होगा। आज हम लोग अगर अपने जीवन में झांक के देखते हैं तो हमने अपने जीवन को कितना जटिल, कितना मुश्किल बनाया। जिस जीवन को हमें आसान बनाना था अपने और दूसरे के, उसे ही हमने बहुत मुश्किल बना लिया, अपने व्यवहार से, किसी और के द्वारा नहीं, अपनी उस अस्पष्टता की वजह से कि पता नहीं हम अगर कोई चीज स्पष्ट कह देंगे तो सामने वाला उसका क्या अर्थ लेगा, सामने वाले को मेरी कमजोरी मालूम पड़ जाएगी तो कहीं ऐसा नहीं कि वो मेरे को धोखा दे। ऐसी बहुत सारी मुश्किलें हमें सामने आती हुई दिखाई पड़ती हैं, ऐसा लगता है कि ये रास्ता तो बहुत मुश्किल का है, बहुत स्पष्टवादी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा दुराव छिपाव सबसे रखना चाहिए। ऐसा लगता है कि नहीं लगता? मैं अपने मन से ऐसी तो नहीं बोलता जा रहा हूं, मन को ऐसा लगता तो होगा। एक अविश्वास हमारे भीतर, सामने वाले से मैं कितनी बात कहूं जिससे कि मैं सेफ रहूं, और हम स्पष्ट नहीं हो पाते। हमारे भीतर जो एक पारदर्शिता होनी चाहिए, जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वो नहीं आ पाती। किसी भी क्षेत्र में देख लें, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, कोई भी क्षेत्र हो, एक स्पष्टवादिता, एक पारदर्शिता हमारे व्यक्तित्व में नहीं आ पाती। और उसका कारण क्या है? कारण सिर्फ इसका ही है कि कोई हमें फिर चीट ना करे, कोई हमारे साथ इमोशनल ब्लैकमेलिंग ना करने लगे। और होता है कि किसी की अगर कोई बात वो स्पष्ट कह देता है तो फिर हम उसके उस कमजोर पहलू को जान करके और उस व्यक्ति को फिर हम और मुश्किलें खड़ी करते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति बहुत स्पष्ट होना पसंद नहीं करता। लेकिन जो अपने जीवन को एक बार स्पष्टता से जीना शुरू कर देते हैं, जो बहुत पारदर्शी अपने जीवन को जीना शुरू कर देते हैं, उनके जीवन में शुरुआत में भले ही मुश्किलें आती हैं, लेकिन फिर सबको ये मालूम हो जाता है, फिर कोई उनके साथ गलत व्यवहार नहीं कर पाता, कोई उनकी कमजोरी को जान करके भी और उनका कोई बिगाड़ नहीं कर पाता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो बहुत स्पष्टवादी है, वो कमजोर दिखाई पड़ता है लेकिन है अपने आप में बहुत सबल। वो सांसारिक रूप से कमजोर हो सकता है लेकिन आत्मिक रूप से बहुत प्रबल होगा, उसका अपना नैतिक बल बहुत अधिक होगा, क्योंकि उसने कहीं कुछ भी छिपाया नहीं है, जो है वो स्पष्ट है, सब जानते हैं ऐसा है ऐसा है। वर्णी जी के जीवन में ये चीज देखने मिलती थी, उनकी सरलता और स्पष्टवादिता। आज भी जो लोग उनके संपर्क में रहे हैं उन्हें प्रभावित करती है। एक व्यक्ति ने बहुत भरी सभा में वर्णी जी से पूछा, भिंडी की सब्जी बनती है, लोग खाते हैं, भिंडी को भिंडी ही कहते हैं कि कुछ और कहते हैं आपकी भाषा में? मेरे ख्याल से आपकी भाषा में भी वही बोलते हैं। नहीं, क्योंकि लौकी को आल भी बोलते हैं, दूधी भी बोलते हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं उसके, पर इसका यही नाम। तो बाबा जी से पूछ लिया, क्योंकि बाबा जी को रोज भिंडी उनके भोजन में रहती थी। तो कहा कि बाबा जी, भिंडी खाने योग्य है कि नहीं है? भिंडी के साथ में एक मुश्किल ये है कि कभी कभी उसमें कीड़ा लग जाता है और वो भीतर घुस जाता है, और फिर उसको मुश्किल है, अगर आप चूक गए तो बनाते समय वो कीड़ा मर जाता है, इसलिए। और कई लोग जो है थोड़े और ज़्यादा आगे बढ़ते हैं तो उसमें एक लचीला सापन रहने की वजह से, उसमें एक रस की वजह से एक तार जैसा निकलता है, तो उस तार की वजह से वो मानते हैं कि जब आपने उसमें से सब्जी निकाली और वो तार लगा रहा तो वो सकरा हो गया मामला परोसते समय। ऐसे बहुत सारे, नहीं खाना है तो मत खाओ, लेकिन निंदा करके मत दूसरे को भी मुश्किल में डाल, है कि नहीं? सीधी सी स्पष्ट जो चीज है वो स्पष्ट है। बाबा जी से पूछ लिया, उनको जरा सा मुश्किल में डालने के लिए, क्योंकि रोज खाते हैं, तो अब बाबा जी से ही पूछ ले कि बाबा जी, भक्ष्य की अभक्ष्य खाने योग्य है कि नहीं? अब अगर चाहते अपने आप को सेव करना, ऐसे मौके पर आता है मन में कि कोई ना कोई आर्गुमेंट दें, कोई ना कोई लॉजिक दें कि वो ऐसा है और वो ऐसा है। सीधा सीधा बाबा जी ने उत्तर दिया, भैया हमें तो भिंडी रुचिकर मालूम पड़ती, भाऊ थे हमें सो हम खाते। अब सवाल यह है कि बाबा जी अपनी कमजोरी बता रहे हैं और साथ में जवाब भी दे रहे हैं कि मैं इतना गैर बुद्धिमान नहीं हूं कि अभक्ष होते हुए भी खा लूं। बाबा जी खाते हैं इसका मतलब भक्ष्य है, लेकिन सवाल सिर्फ यह है कि मुझे रुचिकर लगती है, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं। आप शायद मेरी उस कमजोरी को जानना चाह रहे हैं, तो मेरे अंदर कमजोरी है। इतना स्पष्टवादी होने वाला व्यक्ति अपनी कमजोरियों को धीरे धीरे करके हटा सकता है, वरना हम लोग तो क्या करते हैं कि अपनी कमजोरियों को दूसरा जान करके और हमारे साथ हमें मुश्किल ना खड़ी करे, इसलिए हम अपनी कमजोरियों को खुद भी नहीं जानना चाहते। दूसरा ना जान पाए ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन हम ही अपनी कमजोरियों को ना जाने, इतनी अस्पष्टता तो नहीं होनी चाहिए। हमारी अपनी कमजोरियों को हम स्वीकार कर सकें, हो सके तो हम चार लोगों के बीच में अपनी कमजोरियों को, कि मेरे अंदर ये कमजोरी है, मैं उस कमजोरी को धीरे धीरे करके दूर कर दूँ, तब ये कहलाएगी स्पष्टवादी था। लेकिन बहुत मुश्किल है भैया, एक जगह लिखा था, मैं पढ़ता था तो, कि कोई व्यक्ति अगर आपसे कहे कि मेरी कोई गलती हो, मेरी कोई कमजोरी हो तो जरूर बताइएगा, तो कृपा करके उसे कभी उसकी कमजोरी और गलती मत बताना। वो आपसे ये अपेक्षा नहीं रख रहा, वो ऐसा कह के आपसे अपनी प्रशंसा चाह रहा है। देखना मजा, भीतर जो है एक छल फिर भी है ऐसा कह करके। कई बार अपन दूसरे से ये कहते पाए जाते हैं कि देखिए, कोई अगर कोई कमी हो, कोई गलती हो तो आप जरूर बताइएगा, तो वो कहे, अरे नहीं नहीं नहीं, आपका तो बढ़िया है प्रश्न। वो सुनना क्या चाह रहा है? वो सुनना ही नहीं चाह रहा है, आपकी कमजोरी नहीं सुनना चाह रहा, आपके फॉल्ट्स नहीं जानना चाह रहा, वो तो ये सुनना चाह रहा है कि हाँ बहुत अच्छा, सब कुछ आपका बहुत अच्छा है। ये क्या चीज है? ये अब सबके भीतर ये चीज है, और यही हमारी पारदर्शिता को खंडित करने वाली चीज है, यानी हमारी स्पष्टवादिता को नष्ट करने वाली चीज। और तीसरी चीज बहुत उन्मुक्त हृदय होना। अपन अब धीरे धीरे करके इस चीज से दूर हटते जा रहे हैं। पहले इतना उन्मुक्त हृदय होता था कि दरवाजे पर कोई अपरिचित भी आ जावे तो बहुत तहे दिल से स्वागत करने का मन होता था, कोई परिचित आ जावे तब तो बात ही क्या है। और अब तो परिचित भी आ जावे तब भी कैसा होता मन कि अब क्या पता कितने दिन रहेंगे, तो पहले नंबर पूछ लेते हैं उनसे आते ही साथ, कहीं जाने के लिए निकले होंगे लगता है। नहीं मतलब नहीं पूछ पाते होंगे पर मन में तो लगता हो। पहले मुझे याद है कि जब कोई मेहमान घर में आया करता था तो इतना हर्ष होता था सारे परिवार को कि चलो दो तीन दिन के लिए अब जरा आनंद रहेगा, एक जो मोनोटोनस हो गई थी लाइफ वो जरा सी चेंज होगी, इनके साथ बैठ करके अब इनके जीवन के अनुभव सुनेंगे, इनके जीवन से कोई अच्छी चीजें जानने की हमको एक अवसर मिलेगा। आज वो चीज नहीं है, आज हमें बोझ मालूम पड़ता है। क्यों आज हम क्यों नहीं इस तरह से वार्म हार्टेड होकर के दूसरे के साथ मिल पाते हैं? कहीं कुछ है जो हमारे जीवन को असहज बना गया है। अब तो सिर्फ हमारे जिनसे स्वार्थ है उनसे ही हम मिलते हैं, मिलना पसंद करते हैं, स्वार्थ की पूर्ति होने पर भी मिलना पसंद नहीं करते हैं और स्वार्थ की पूर्ति होते न जान करके भी मिलना पसंद नहीं करते। ये स्वार्थ हमारी उस उन्मुखता को नष्ट करता है। संबंधों के बीच, परस्पर व्यक्ति व्यक्ति के बीच जो एक उन्मुक्तता होनी चाहिए थी, जो एक हार्दिकता होनी चाहिए थी, जिससे कि हमारे चित्त की सरलता मालूम पड़ती है, हमें विचार करना चाहिए कि क्या हम ऐसे फिर से हो सकते हैं। आज भी छोटे छोटे बच्चों को देख लीजिएगा, वो मिलते हैं वो पूरे हृदय से पूरे मन से, लेकिन धीरे धीरे हम भी उन्हें यही सिखाते हैं कि ऐसे नहीं, जैसे हम एक चेहरा लगा के जीते हैं वैसे ही जीना चाहिए। हमारे अपने लोगों से मिलने के अलग अलग चेहरे हमने बना रखे हैं और जब उनसे मिलते हैं तो एक नया चेहरा लगा करके मिलते हैं, ताकि किसी को ये एहसास ना हो सके कि हम उनसे मिलना नहीं चाह रहे। नहीं, बहुत प्रसन्नता के साथ, बाहरी प्रसन्नता के साथ मिलेंगे, शायद उसे लगेगा कि बहुत अच्छे से मिले, लेकिन भीतर तो उतनी हार्दिकता नहीं आ पाती। पर ऐसा नहीं है कि सामने वाला इस चीज को ना समझ पाता हो या कि हम स्वयं भी इस चीज को ना महसूस कर पाते। सब महसूस करते हैं लेकिन बदल कोई नहीं पाता। करना अपने को क्या है, एनालिसिस करने का अपना उद्देश्य क्या है? ये सब चीज है इसलिए कि कभी हमारा ध्यान इस तरफ चला जाए और हम थोड़ा सा उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश। एक उदाहरण, और वो अपनी सामान की पोटली बांध करके रास्ते से चली जा रही थी, है यार? याद है तो फिर करते क्यों नहीं? मैं तो सोच रहा था आपको मालूम नहीं है। उदाहरण तब पुराना हो जाएगा जिस दिन मेरे जीवन में घटित हो जाएगा, वरना रोज नया। कितनी कितनी बार पढ़ा होगा हमने, कितनी कितनी बार सुना होगा और दूसरे को सुनाया होगा, लेकिन वो तब तक पुराना नहीं होगा जब तक कि मेरे जीवन में वो घटित नहीं होते। वो बुढ़िया चली जा रही है, सिर पर पोटली रखे अपने सामान की, बहुत भारी लग रहा है उसको। एक घुड़सवार निकलता है, उससे निवेदन करती है कि थोड़ी दूर पोटली को रख करके मेरे वजन को थोड़ा हल्का कर दो तो अच्छा रहेगा। वो कहता है कि अरे कौन पड़े, आगे बढ़ जाता है, मैं नहीं रखता तुम्हारी पोटली। फिर एकदम मन में आता है कि ये वृद्ध लोगों का बड़ा अलग रहता है, ये अपना सामान आमान बहुत कीमती बांध के रखते हैं इस तरह पोटली में, और ये बूढ़ी अम्मा पता नहीं क्या क्या खजाना रखे होगी इसमें, मैंने गलती कर दी, ले लेता और लेकर के आगे भी चला जाता तो ये मेरा क्या कर लेगी, भाग भी नहीं पाएगी ये, तो पकड़ भी नहीं पाएगी, मैं तो घोड़े पर हूँ। ऐसा जैसे ही मन में आया लौट करके आ गया और बड़े प्यार से, अभी तो बहुत रफ बिहेव किया था उसने, अब उतना ही प्यारा व्यवहार कर, अपन भी करते हैं जहाँ अपना स्वास्थ्य करता है, इतना ही प्यारा, इतने उन्मुक्त, बड़े हार्दिक मालूम पड़ते हैं कि हमसे ज़्यादा कोई हृदय से आपको चाहने वाला नहीं है, हम ही हैं बहुत हृदय से चाहने वाले। क्यों? क्योंकि स्वार्थ है कहीं ना कहीं। अब बुढ़िया के पास आकर के बड़े प्यार से कहता, बूढ़ी अम्मा क्षमा करना मुझे, आपको बोझ बहुत लग रहा होगा, मेरी गलती हो गई, जो मैंने आपसे इनकार कर दिया, आप दे दीजिएगा, मैं अपने घोड़े पर रख लेता हूँ, आपका बोझ हल्का हो जाए। बूढ़ी अम्मा ने कहा कि अब जाओ, मैं तो अपने सिर पर ही रख करके ले जाऊंगी, थोड़ा ही तो और रह गया, जब इतना चल लिया तो थोड़ा और चल लूंगी। घुड़सवार को बड़ी निराशा हुई, जब जब भी हम इस तरह करते हैं और सामने वाला समझ जाता है तो ऐसी निराशापन को होती नहीं होती, अरे यार ये सामने वाला समझ गया कि मैं इसको बुलाना नहीं चाह रहा था, फिर भी मैंने फॉर्मेलिटी करी। अब वो घुड़सवार कहता है कि अभी तो यहां से कोई नहीं निकला, बूढ़ी अम्मा तेरे से किसने क्या कह दिया, अभी तो खुद ही तुम देने को मुझे अपनी पोटली तैयार थी, अब क्या हो गया तुम्हें। तो बूढ़ी अम्मा ने मालूम क्या कहा कि कोई नहीं कह गया, वो जो तुम्हारे हृदय में कह गया ना दिल में, वो ही मेरे से भी कह गया है। अपन सोचते हैं कि हम दूसरे के साथ वैसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम अपने मन में ही वैसा कर रहे हैं, हम अपने आप के साथ वैसा कर रहे हैं, दूसरे के साथ नहीं, अपने साथ पहले हम कर रहे हैं, अपने मन को पहले हम खराब करते हैं तब दूसरे के साथ कुछ व्यवहार करता है। चौथी चीज, हमारे जीवन को अगर हम सचमुच अच्छा और सरल बनाना चाहते हैं तो सादगी पूर्वक जीवन जिए। सादगी के मायने क्या है सब समझते हैं, जितना आवश्यक है खाने पहनने ओढ़ने के लिए, बिना किसी दिखावे के हम उतने में ही अपना जीवन जिए, वही सादगी पूर्वक जीना कहलाए। लेकिन आज तो अपन ने अपने जीवन को कैसा बना लिया है, सादगी से जिएंगे कोई ध्यान ही नहीं देगा अपनी तरफ, सीधे साधे कपड़े पहन के जाएंगे किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा, तो जरा कैसे वाले जरा अलग से दिखने वाले। तो अब वैसा पैटर्न शुरू हो गया, खाने पीने का भी वही, सीधे सीधे भी खाया जा सकता लेकिन नहीं, वो कांटे से पहले उसको दबाएंगे, फिर चम्मच से उसको करके फिर बाद में खाएंगे, घर में नहीं, जब चार लोगों के बीच बैठेंगे तब, घर में तो चाय जैसे खा लेंगे, घर में तो फटी वाली बनियान में भी निकल सकता है लेकिन बाहर तो नहीं निकल सकते फटी बनियान पहनकर, बाहर तो जरा अब देखना मजा। ये क्या हुआ, इससे क्या हुआ, इससे एक जो दोहरा जीवन जीने की हमारी प्रवृत्ति हुई, जो एक कृत्रिम जीवन जीने की प्रवृत्ति हुई, उसने हमारी अपनी सादगी को नष्ट कर दिया और कुछ नहीं हुआ। लगता अच्छा है कि तो क्या करें हम, क्या फटे कपड़े पहन के बाहर निकल जाए, महाराज ऐसी सलाह दे रहे हैं, नहीं मैं ऐसी सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जरा हम देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों की वजह से और हम अपने जीवन को कृत्रिम बना लें अपने जीवन को जो बात नेचुरल और बात सीधा सादा होना चाहिए था वो ना बना करके और उस कृत्रिमता में जीने का जो हम आज अपराध कर रहे हैं, अपने साथ ही आत्म प्रवंचना कर रहे हैं, उससे तो हम बच सकते हैं। ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, थोड़ा दुख तो लगेगा। दूसरे को हम ठगते हैं, उसके पहले हम खुद ठगाए जाते हैं अपने जीवन से। ये आत्म प्रवंचना कहलाती है। जैसे नहीं है वैसा प्रकट करने की जो कोशिशें हैं हमारी, अपने आप को कृत्रिम रूप से बहुत आर्टिफिशियली अपनी लाइफ जीने का जो हमारा ढंग हमने ईजाद कर लिया है, उसके चलते हमारा अपना सीधा सच्चापन और सादगी गायब हो गई, जो हमारे जीवन को बहुत ऊंचा उठाने वाली। एक सिर्फ स्टेटस की वजह से हमने और क्या क्या नहीं किया है अपने जीवन में, अपनी सादगी को बालाए ताक रख दिया है। सिर्फ स्टेटस, और हमारे स्टेटस सिंबल्स भी देखना, जिसको कि मैंने एक दिन कहा था कि आधुनिकता के मायने यह है कि मैं बॉटल हाथ में लेकर के और चार लोगों के बीच इस तरह से पानी पीऊं, आधुनिकता है। कैसा लगेगा? मुश्किल में डाल दिया मैंने आपको। ग्लास से पीने के जमाने लग गए, कौन ग्लास साफ करेगा, कौन पिएगा? ऐसा लग रहा होगा कि महाराज जी कौन से जमाने में, 16वीं शताब्दी मिले जाना जा रहे हैं, हम तो 21वीं में आ गए थे। हम सोच रहे थे महाराज जी भी 21वीं में ही होंगे। नहीं, 21वीं और 16वीं से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि मेरे अपने जीवन की सादगी कितनी अधिक कृत्रिमता में बदल गई। इसलिए ये उदाहरण दे, आधुनिकता के मायने ये नहीं कि मैं अपने जीवन जीने का जो बहुत आसान सा तरीका है उसको छोड़ करके बहुत कृत्रिम तरीका अपना। बहुत सारी ऐसी चीजें हमने अपने जीवन में स्टेटस की वजह से और अपना ली, मुझे एक एक के बारे में कहने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उन सब चीज़ों का एनालाइज करके क्या करूँगा। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सादगी पूर्वक भी जीवन जिया जाए। मुझे अपने समय में बहुत शौक था काहे का, कपड़ों के पहनने के ढंग का, उनके अपने स्टाइल का। मुझे एक सभा में और 3 दिन तक सुबह दोपहर और शाम 3-3 सत्र में और माइक संभालना था, तो तब मैंने 4 दिन पहले से अपनी ड्रेस की तैयारी की थी, नो ड्रेस तैयार करके रखी थी, कोई भी चेंज कोई भी रिपीट नहीं हो। जब मैं अगली सभा के सत्र का संचालन करूँगा तो कोई अलग ही ड्रेस पहनूँ। और फिर मालूम, जिस दिन मैंने पहले दिन और पहले सत्र का संचालन किया और जो ड्रेस पहनी, उसके बाद फिर दोपहर में मैंने चेंज नहीं की, शाम को भी चेंज नहीं की, दूसरे दिन भी वही, दोपहर शाम 3 दिन मैंने एक ही ड्रेस पहना। क्यों? मेरे मन में एक विचार आया कि धर्म की सभा का संचालन कर रहा हूँ, लोगों को भौतिक जीवन में सुख नहीं है, इसका मैसेज देने के लिए ये 3 दिन की सभा आयोजित की गई है, और मैं अपने उन थोड़े से भौतिक सुखों के लिए, जिनके पास एक ही जोड़ी कपड़े होंगे वे भी तो जीवन जीते होंगे, और किसी ने भी क्या कर लिया मेरा 3 दिन तक अगर मैंने एक ही कपड़े पहने तो, यही कह लिया होगा कि इनके पास और है ही नहीं। हाँ ठीक है, बल्कि होता यह है कि किसी का ध्यान नहीं जाता, अपन का ही मन होता है कि शायद सब लोग हमारी ड्रेस देख रहे हैं कि हमने कौन से पहने, लोग कहेंगे कि कल भी यही पहने थे और आज भी यही। किसी का ध्यान नहीं जाता, सबका ध्यान इस बात पे रहता कि लोग मेरी देख रहे कि नहीं देख रहे, कोई किसी की नहीं देखता है। क्या आप जरा देखना इस चीज को, एनालाइज करके देखना। लेकिन क्या करें, हमारा सारा कंसंट्रेशन इस बात पर रहता है कि जो मैं करूंगा उसका रिप्लाई क्या आएगा, लोग मुझे क्या समझेंगे, इस पब्लिक ओपिनियन की वजह से। और हम अपनी सादगी को छोड़ देते हैं, जबकि आनंद उसी में आता है, हम जैसे हैं वैसा। वरना फिर अगर एक बार हम इस चीज को अपने जीवन में और शुरू कर देते हैं तो फिर इतनी मुश्किलें खड़ी होती हैं, इतना संकलेश करना पड़ता छोटी छोटी चीजों को लेकर के। यहाँ तो अभी एक परिवार बैठा हुआ है, मैं नाम नहीं लूंगा, पर मुझे जब मैं इंदौर चतुर्मास में था तब बताया था कि मैं चाहूँ तो अपने बच्चों को और स्कूल गाड़ी से भेज सकता हूँ, मैं चाहूँ तो अपने बच्चों को बहुत बढ़िया बढ़िया ड्रेस दिला सकता हूँ, लेकिन मैंने उनके दोनों बच्चों के जो कि आप अवार्ड भी ले चुके हैं और उसमें से एक तो मुझे दिखा भी था, दोनों तो नहीं दिखे, वो बहुत सीधे सादे कपड़े पहनते थे और अपने साइकिल से और स्कूल जाते थे। उनके पिता जबकि एक बहुत बड़ी सर्विस में जिसमें 50,000 रुपये सैलरी वो महीने भर में कमाते, तब भी उन्होंने अपने बच्चों को ये सिखाया कि तड़क भड़क के कपड़े पहनने से विद्या आती हो ऐसा नहीं है और कार से स्कूल जाने विद्या आती हो ऐसा नहीं है, बल्कि ये तो दूसरे लोगों को और अपनी पर पढ़ा होगा और उसमें पढ़ करके और अच्छे अच्छे लोगों के इंग्लिश वालों के कान काटते हैं। यहीं पर हैं इसी सभा में, बाद में बता दूंगा। हैं आज भी ऐसे लोग जिन्होंने स्टेटस को ये नहीं माना है कि मैं अपनी सादगी छोड़ दूं, वही उनका स्टेटस है, उनकी सादगी जो आज भी इंप्रेस करती, मुझे तो इंप्रेस करती, आपको करे अगर, वरना कभी अगर सीधे सादे कपड़े पहन लिए हैं तो मन ही मन ऐसा लगता होगा कि अरे यार कोई क्या कहेगा इतने ऑर्डिनरी से कपड़े पहने, नहीं ऐसा कभी मन में भाव नहीं आता और बहुत सहज रूप से जीवन जीते हैं। मुझे गौरव होता है कि आज भी लोग सादगीपूर्वक अपना जीवन जी रहे हैं। एक छोटी सी घटना मुझे कटनी के आसपास एक रीठी गांव है वहाँ की याद, एक बूढ़ी अम्मा हो गई, उनके समय में कभी फोटोग्राफी नहीं हुई, फोटो नहीं खींचे गए, बेटों का मन हुआ कि अब दादी इतनी बड़ी हो गई हैं फोटो तो है नहीं घर में उनका, एक ठो खींच लेना चाहिए, तो कटनी जाना पड़ता था 30 किलोमीटर रीठी से फोटो खिंचवाने के लिए। उन दिनों वो बड़े बड़े वाले वैसे कैमरे रहते थे, वो इतना बड़ा कैमरा, फिर उसमें काला वाला ढक करके उसके नीचे फिर वो देखता उसमें से खींचेगा ऐसे बैठो ऐसे करो, है ना, अब के वाले नहीं, वो कटनी में हुआ करता था। तो वो उन्होंने अपनी अम्मा को बहुत मना करके कि अम्मा चलो फोटो खिंचवानी है और आपका एक फ़ोटो तो कम से कम घर में रहना चाहिए, वो इनकार करती रही, क्या करना हमारे लिए फ़ोटो का, ठीक है जीवन व्यतीत हो गया, तुम सबके हृदय में मेरी छवि बनी रहे इतनी ही बहुत है, वरना छवि तुम्हारे हृदय से निकलकर दीवार अकेले पे टंगी रहे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। अब ऐसा जब कहा तो वो भी चुप हो गए कि बात तो ठीक है, फिर भी अब सबका मन बन गया था फोटो खिंचवाने का, तो माँ से कहा कि हम लोग से खिंचवाएं, तो माँ बोली हाँ हाँ अभी तुम लोग जाओ, तुम जाओ, मैंने तो अपने लिए मना किया था, मैं तो नहीं जाऊँ फोटो खिंचवाने। और सब जब नीचे उतर गए फोटो खिंचवाने के लिए और जाने लगे तो ऊपर से फिर आवाज़ दी अपने बेटे को, जरा सुनना बेटे, तो फिर से आया कहले देखो हमने तुमसे मना कर दिया है, हमारा फोटो नहीं खिंचवाना। उनको इतनी समझ में नहीं आया कि मेरे जाए बिना खिंचेगा कैसे, इतनी सरलता, इतना सीधा सादा जीवन हो सकता है अपना, इसको अपन कहेंगे अज्ञानता। अज्ञानता नहीं है ये सादगी है कि मेरे मन में अब अपने जीवन में किसी प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है, तुम सब मुझे उसमें मत डाल देना, मुझे अपने फोटो की कोई आवश्यकता नहीं, मुझे अपने बाह्य रूप को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, मेरे अंतरंग को मैंने जितना उज्ज्वल बनाना था उतना बना लिया, जितना सीधा साधा बनाना था उतना बना लिया, कोई देख पाए या ना देख। एक और उदाहरण कहीं पढ़ा था, कोई बहुत ज्ञानवान हो जाए और भोलापन बना रहे तो बहुत कठिन, बड़े होने के बाद भी छोटे बने रहना बहुत कठिन, आज के समय में तो छोटे छोटे लोग जिस अकड़ के साथ उसको देख के लगता है कि ये कभी बड़े नहीं होगा। बच्चन को इसीलिए लिखना पड़ा कि जो आपसे झुककर मिला होगा मानिए वो आपसे बड़ा रहा होगा, वरना आज ये जो एक सहजता थी, ये जो सादगी थी, जो एक भोलापन था, वो आज भी जीवित रहता लेकिन नहीं रह पाता। हम देखते हैं कि चाहे हमारे पास धन संपदा ज़्यादा हो जाए, चाहे हमें कोई पद प्रतिष्ठा मिल जाए या थोड़ा सा हमारा ज्ञान बढ़ जाए, हम बाकी जीवों के प्रति किस तरह का व्यवहार करने लगते हैं। हम अपने को बहुत बड़ा मान बैठते हैं और उसकी वजह से फिर छोटी छोटी चीज़ें जो बचपन में हमें बहुत भोलेपन में सुख दिया करती थी वो सुख हम नहीं पा पाते। कभी विचार करना चाहिए। रास्ते चलते एक थोड़ा कम बुद्धि वाला, लोग तो उसको पागल ही कहते थे, वैसा व्यक्ति चला जा रहा था। वो क्या करता था, कचरे में से कागज वाले को उठाता था, उनको साफ करता था, पॉकेट में रख देता था, ऐसे कुछ भी। तो एक दिन वो कचरे में से उसने एक ठो देखा, कोई चमकीली सी चीज़ है उठाई उसने, तो वो टूटा हुआ किसी का दर्पण था। तो उसको उसने पहुँचा वोछा और जैसे उसने पहुँचा तो उसमें उसको अपना ही चेहरा दिखा। अब देखना उसका भोलापन। अब उसने कभी अपने बाल तो संभाले नहीं थे, ना दाढ़ी वाणी संभाली थी, चेहरा भी ऐसे ही था। तो जैसे ही उसको दिखा उसमें कि ऊल जलूल से बाल हैं, ऊल जलूल सी दाढ़ी है और चेहरा भी बिल्कुल बेढंगा है, तो मालूम क्या कहता है, ऐसे बने फिरते हो जब भाई तो घूरे में डरे जा। अब बता उसको कौन समझाए, अपने लिए ही कह रहा है वो। उसमें अपने चेहरे को देखकर वो सोच रहा है कि दर्पण ऐसा है। ये इतनी इतना भोलापन हंसी आती ना, ऐसा क्या अपने जीवन में नहीं आ सकता। बहुत मुश्किल है। अपन तो ज्ञानी बने फिरते हैं, अपन तो बड़े बने फिरते हैं, अपन तो बहुत जानकार बने फिरते हैं, तब फिर ये चीज नहीं आ सकती। बच्चों को देख लीजिएगा, छोटी छोटी बातों में और खिलखिला करके हंस पड़ते हैं। अपनी हंसी भी झूठी, अपना रोना भी झूठा। ना अपन ठीक ठीक हंस पाते, ना अपन ठीक ठीक रो पाते। इतनी भी सादगी नहीं रही, इतना भी भोलापन नहीं रहा। जरा विचार करना, और हो सके तो इस तरह अपने जीवन में कुछ थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों को लाने का प्रयत्न करना चाहिए। मैं इससे ज़्यादा और आपसे क्या कहूँ, मैं आपसे कोई अपेक्षा नहीं रखता हूँ कि आप ऐसा कर पाएंगे। मुझे अपने आप से भी अपेक्षा नहीं है, बस एक मन में विचार जरूर है कि ये सब चीज़ें कितनी अच्छी थी और हमने अपने जीवन से उन्हें कैसे विदा दे दिया। काश हमें फिर से ऐसी सद्बुद्धि आ जाती कि हम इन सब चीज़ों को अच्छा मान करके और अपने जीवन में, अपने आचरण में कभी जो शेष जीवन रहा है उसमें ला सकते, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता। इसी भावना के साथ कि अपने जीवन को हम बहुत सीधा और सच्चा बना सकें, बहुत शांतिपूर्वक सरलतापूर्वक अपना जीवन जी करके और इस जीवन को सार्थक कर सकें, इसी भावना से आज यहाँ बैठ करके नमोकार करते हैं जो हमारे जीवन के परिवर्तन करने में सहायक बने। नमो अरिहंताय, ओम नमो सौ सा।
मङ्गलम् अरिहन्तामङ्गलम् सिद्धामङ्गलम् साहूमङ्गलम् केवली पन्नतो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोगुत्तमा अरिहन्ता पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्यामि अरिहन्ते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि ताहु शरणं पवज्यामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्यामि धम्मं शरणं पवज्यामि
बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह लग्न स्वरूप तुम्हारा है जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला अथवा वह शिव के निष्कंटक पद
प्रभु में मिलता है, इस जन्म में ना सही प्रभु में मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। इस जन्म में ना सही प्रभु में मिलता है, इस जन्म में ना सही प्रभु में मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। इस दुनिया के मेले में एक तर तर का भिखारी दूच महलों में, देखो तो है भाई इस दुनिया के मेले में एक तर तर का भिखारी दूच महलों में। एक से पैदा हुए पर भाग्य बदलता है, एक से पैदा हुए पर भाग्य बदलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। एक पत्थर वो है जिसकी पूजा करते हैं, एक पत्थर वो भी है हम जिस पर चलते हैं। एक पत्थर वो है जिसकी पूजा करते हैं, एक पत्थर वो भी है हम जिस पर चलते हैं। पर्वत और चट्टान से एक सा निकलता है, पर्वत और चट्टान से एक सा निकलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। एक से तो फूल है माली के बगीचे में,